نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. ہم پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب تجلیات نبوت, اس میں جس چیپٹر پہ اس وقت ہیں وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج, ٹھیک ہے؟ اور ہم اس میں عام الوفود کا, یعنی وفود کا جو سال ہے اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے وفد آئے جنہوں نے آپ سے ملاقات کی, اور اس کے علاوہ بھی کچھ وفود عام الوفود سے پہلے یا بعد میں بھی آئے, لیکن سب کو یہاں ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا. چونکہ یہ سال سب سے زیادہ وفود کا سال تھا اسی لیے اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وفود یمن کی طرف سے آ رہے ہیں جو ساؤتھ میں ہیں, کچھ نارتھ کی طرف سے آ رہے ہیں, کچھ ایسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں. تو ڈفرینٹ وفود آئے اور ان کے آنے کی وجوہات بھی مختلف تھیں. کچھ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آئے, کچھ اسلام لانے کے لیے آئے, کچھ اسلام لا چکے ہیں اور اپنے لیے دعائیں کرانے کے لیے آئے. اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس کا مطلب اسلام کے بارے میں چرچا ہر جگہ پھیل چکا تھا, اور وہ قبائل جو آج تک انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ مکہ کا کیا بنتا ہے, وہ بھی اب آ رہے تھے. اور اب زیادہ آسان تھا لوگوں کے لیے کہ وہ اس دین کے بارے میں سمجھیں, خود آ کے اس دین کے بارے میں پوچھتے تھے. مگر یہ یاد رکھیے کہ اس وقت بھی جتنے لوگ اسلام لا رہے تھے وہ سب کوئی ایسے نہیں تھے کہ یعنی کبائر صحابہ کے ایمان کے برابر ان کے ایمان ہو گئے تھے. بعض کے کم تھے, بعض کے زیادہ تھے, بعض منافق تھے, یعنی بعض ایسے بھی قبائل تھے جو اس وقت اسلام لیا ہے لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے. ہم نے دیکھا تھا ایک جو وفد آیا تھا وفود میں سے, نجران کا وفد, اس کے اندر عیسائی تھے اور مباہلہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی لیکن انہوں نے اس کی جرت نہیں کی اور جزیہ دینا قبول کیا. اب چونکہ یہ وفود کافی سارے ہیں تو آپ بہتر یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ آپ اپنے نوٹس میں اس طرح سے لکھیں گے, مثلا قبیلہ عبد القیس کا وفد, اور اس کے اندر جو خاص بات تھی صرف وہ لکھ لیں کہ یعنی ہم نے جیسے پڑھا تھا عبداللہ بن اشعج کا جو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جو دو باتیں بہت پسند ہیں وہ ان میں تھیں, اور باقی لوگ کود کود کے آ گئے تھے جلدی سے اور وہ اطمینان کے ساتھ آئے تھے, تحمل تھا ان کے اندر بہت زیادہ. تو یہ خاص بات ہے کس قبیلے کی آپ کو پتہ چلتی ہے, ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو سعد بن بکر کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں تھے وہ جو ان کے سردار زمام بن سالبہ جو اکھڑ مزاج بھی تھے, جنہوں نے دو چوٹیاں بنائی ہوئی تھیں, سختی سے بات کرنے والے تھے, اور وہ جو پانچ فائیو پلرز آف اسلام کی بات کی اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا نہ اس سے کم کروں گا, وہ اس قبیلے سے تھے. پھر عذرا اور بلی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قسمت کا حال پوچھتے تھے, آستانوں پہ ذبح کرتے تھے اور ان کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں بنو اسد کے بارے میں, تو ہم ابھی سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ آیات ان کے لیے ہی اتری تھیں کہ تم آ کے احسان نہ جتاؤ, تو جنہوں نے احسان جتایا تھا وہ بنو اسد تھے. پھر تجیب کا وفد جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں بھی کہ کس طرح سے وہ آئے تھے, اور انہی میں ایک لڑکا تھا جو سب سے کم عمر تھا اور اس نے ایک دعا کروائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ پھر بنو فزارہ کا وفد تھا اور انہوں نے قحط سالی کے لیے दुआ करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी। फिर नजरान का वफद था जिसमें वो ईसाई थे जिनको मुबाहला की दावत दी गई थी। फिर अहले ताइफ का वफद था जिन्होंने उरवा बिन मसूद को, सकफ़ी को, और उरवा बिन मसूद कौन थे हमने लास्ट टाइम बात की थी, उनको उन्होंने शहीद कर दिया था, हालांकि उनके अपने ही वो थे। और लात इन्हीं का बुत था और इन्होंने लात को ढाने के लिए कहा था कि हम खुद नहीं कर सकते, आप किसी और को भेज दें। फिर बनू आमिर बिन सासा का जो वफद था जिन्होंने बईर माउना में सहाबा को धोखा देके शहीद कर दिया था, उनमें आमिर बिन तुफैल था। ये आमिर बिन तुफैल जो है ना, ये सुतेला भाई है लबीद का। लबीद बहुत बड़े शायर थे ना, जो मुसलमान हो गए थे, तो उनका सुतेला भाई। तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की थी, और कैसे अल्लाह ताला ने इन्हीं को समझ लें एक तरह से अंधा ही कर दिया अरबद को, और वो इसमें कामयाब नहीं हो सके, और कैसे रास्ते में ही इन दोनों के ऊपर अल्लाह का एक समझ लें अजाब आया था। तो ये इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज ये सब कंफ्यूजन हो जाएगी। अब इनके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कबीला अब्दुल कईस और साद बिन बकर, आपको पता है कि हलीमा सादिया इसी कबीले से थी। इसी तरह बनु असद और नजरान का वफद, ये ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अहले ताइफ का भी, ये बड़े बड़े थे ना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बनु हनीफा का वफद, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एक आदमी का जिक्र है जो इस कबीले से था जिसका नाम मुसैलमा कज़ाब है, और उसने नबूवत का दावा कर दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। ठीक है, अच्छा, मुसैलमा कज़ाब जो था इसका असल नाम ये नहीं था, इसका असल नाम था मुसैलमा बिन समामा बिन हबीब, और ये भी अपने कबीले का बड़ा एक समझ लें मज़हबी लीडर कह सकते हैं, ईसाई थे ना ये लोग। और बचपन में ये शाम के इलाके में गया था, वहाँ पे इसने इल्म हासिल किया, ईसाइयत हासिल सीखी, और फिर उसके बाद वापस जब अपने कबीले में आया तो इसको बहुत ज़्यादा कबीले वाले मानते थे, बड़ी इज्जत देते थे, क्योंकि जाहिर है इतने अरसा ये पढ़ वढ़ के आया, समझ लें बाहर से तालीम हासिल करके आया, तो बहुत ही इसको बड़ा समझा जाता था और इसकी बड़ी इज्जत थी। मगर जो जितना ऊंचे मकाम पर चला जाता है तो बाज़ दफ़ा वही मकाम उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाता है, और यही इसके साथ भी हुआ कुछ कि इसने फिर नबूवत का दावा कर दिया था। और वजह यही थी कि चूंकि इसके लोग इसको बहुत बड़ा कुछ समझते थे, तो अब इससे ये गवारा नहीं हो रहा था कि कोई और आदमी आए जिसकी मेरे कबीले वाले भी इतनी इज्जत करने लगे और बहुत पूछने लगे। तो इसका कबीला जब आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये कबीला बनू हनीफा था, रियाद के करीब ये जगह है, आज भी है यहाँ पे ये कबीला था। तो ये जब आया है तो ये सब इस्लाम ले आए, मगर मुसैलमा आया ही नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, वो बाहर ही रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाकी लोगों को तहाइफ वगैरह दिए तो इसके बारे में लोगों ने बताया कि हमारा एक आदमी है जो नहीं आ सका है, तो उसके लिए भी दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए भी हदिया दिया। अब जब हदिया लाके इसको दिया गया तो ये बड़ा मुतासिर हुआ कि मैं तो गया भी नहीं था और मुझे भी इन्होंने हदिया भेज दिया। तो उसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक पेशकश रखी कि मैं इस्लाम तो ले आता हूँ लेकिन मेरी ये शर्त है, मुझे बाद में आपके खिलाफत मिलेगी और ऐसे होगा, जो भी इसने कही बातें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर इसकी बात नहीं मानी, लेकिन बाद में इसने वापस पलट के जब अपने कबीले में गया तो वहाँ जाके इसने नबूवत का दावा कर दिया था। अच्छा, इसके बारे में कुछ पहले आपने आज तक पढ़ा हुआ है? कुछ मुझे आप लोग बताएंगे कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में पहले से, यानी हम इस बुक में पहले कुछ पढ़ चुके हैं इसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दुश्मनी के बारे में? नहीं, हदीस में नहीं, सीरत की ही बुक में आपने इसके बारे में कुछ पहले पढ़ा है? अच्छा क्या पढ़ा है, कैसे इसने इससे पहले यानी अभी तो ये आए हैं ना लोग, ये वफ़द आया है और 9 हिजरी में आया है, लेकिन इससे पहले कोई इसकी दुश्मनी सामने आई थी? अच्छा क्या थी ना वो बताएं, ये बताइए थोड़ा, कोई कोई क्लू कोई बात बताएं तो फिर मैं बताती हूँ कि आप लोग सही समझ रहे हैं या नहीं जी। पैल टॉक पे यहाँ पे कोई भी किसी को नहीं कोई क्लू, किसने इससे पहले क्या किया था? थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ। चलें मेरे पास तो इस वक्त पेज 348 है बुक में, जिनके मेरे साथ ही पेजेस हैं वो देखें ज़रा, पेज नंबर निकालिए आप, 241 गज़वा बनू कुरैज़ा। नहीं, वो तो बाद में जब उसने नबूवत का दावा कर दिया था तब उसने पोइट्री लिखी थी ना, वो तो बाद की बात है, मैं पहले की पूछ रही हूँ। नहीं ख्वाब वगैरह की बात नहीं हो रही, पहले की मैं पूछ रही हूँ कि आज से पहले इसने कुछ काम ऐसा किया था। तो आप पेज नंबर 241 निकालें, गजवा बनू कुरैजा, इसमें देखें सैयद यमामा समामा बिन आसाल की गिरफ्तारी, मुहर्रम 6 हिजरी। समामा बिन आसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन इस्लाम को सख्त नापसंद करते थे, चुनाचे मुहर्रम 6 हिजरी में मुसैलमा कज़्ज़ाब के हुक्म से भेस बदल कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले। समामा के बारे में आपको याद है, जिनको सुतूनों से बांध दिया गया था मस्जिद नबी के, और उसके बाद ये कैसे इस्लाम ले आए थे, ये इसी के कबीले से थे असल में, बनू हनीफा की एक शाख से थे। तो इसने पहले भी इस किस्म की हरकत की थी कि एक बंदे को भेजा के भेस बदल के जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, यानी ये पहले से इसके अंदर ये जलन थी कि क्यों ये कैसे ये नबूवत का दावा करे बैठे हैं और इनके साथ लोग मिल रहे हैं, और ये खबरें तो पहुंच ही रही थी ना। अब चारों नाचार आना ही पड़ा, जाहिर है कबीला जब जा रहा था तो फिर क्या करता, लेकिन आ तो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चलें अब बुक से देखते हैं। ये वफ्त 9 हिजरी में आया, इसमें मुसलमा कद्दाब समेत 17 अफराद थे। ये लोग एक अंसारी आदमी के घर उतरे, यानी जब आते थे कोई होटल वगैरह तो होता नहीं था, तो किसी किसी के घर किसी के मेहमान बनते थे, फिर खिदमत नबी में हाजिर हो कर मुसलमान हो गए। जो बाकी लोग थे, जो बाकी 17 आदमी थे, वो तो मुसलमान हो गए। अलबत्ता मुसलमा कज़्ज़ाब के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो भी मुसलमान हो गया था, और कहा जाता है कि पीछे रह गया था और खिदमत नबी में हाजिर ही ना हुआ था, और कहा था, अब ये पैगाम इसने भेजा जब उन्होंने जाके गिफ्ट इसको इसका दिया, तो इसने कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक पेशकश की थी, एक शर्त रखी थी, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद कारोबार हुकूमत मुझे सौंपना तय कर दिया तो मैं उसकी पैरवी करूंगा, यानी अब इसके बाद मुझे भी हुकूमत सौंपी जाए, यानी खिलाफत इसके बाद मुझे दे दी जाए। इससे कबल यानी इन लोगों के आने से पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाब देख चुके थे कि आपके पास रूए जमीन के खजाने लाकर रख दिए गए और इसमें से सोने के 2 कंगन आपके हाथ में आ पड़े हैं, आपको ये दोनों बहुत गरां और तकलीफदेह महसूस हुए। सोने के होने की वजह से हो सकता है, क्योंकि मर्दों के लिए तो सोना है नहीं। आपको वही की गई कि इन दोनों को फूंक दीजिए, चुनाचे आपने फूंक दिया तो वो दोनों उड़ गए। इसकी ताबीर आपने ये फरमाई कि आपके बाद 2 कज़्ज़ाब परले दर्जे के झूठे, एक तो काज़िब होता है ना, एक कज़्ज़ाब यानी बहुत ज्यादा झूठा निकलेंगे। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसैलमा के पास आए, आपके हाथ में खजूर की एक शाख थी और आपके हमरा साबित बिन कईस थे। साबित बिन कईस का भी आपको याद होगा, सूरह हुजरात में हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, जिनकी आवाज ऊंची थी और शायर भी थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पास जब ये इसने बंदा भेजा कि ये मेरी शर्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए और आपने आपके हाथ में खजूर की एक शाख थी जैसे एक लकड़ी सी होती है, और आपके साथ साबित बिन कैस भी थे। आप मुसलमा के सर पर जाकर खड़े हुए, جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھی اس کا اتنا احترام اور اتنا اکرام کرتے تھے کہ یعنی جب یہ چلتا تھا تو اس کے ارد گرد وہ مطلب ایسے گھیرا ڈال کے چلتے تھے اور اس کو بیچ میں لیا ہوتا تھا اور کور کیا ہوتا تھا اس کو چاروں طرف سے خاص قیمتی یعنی چادروں سے, بڑا پروٹوکول کے ساتھ یعنی اس کو لے جایا جاتا تھا. تو اور اس سے گفتگو کی. مسلمہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ کے ہاتھ میں رہنے دیں, لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں. یعنی اس کی اتنی جرت تھی کہ اس نے کہا چلے اگر ابھی نہیں دے سکتے, پہلی تو اس کی یہ تھی کہ ابھی مجھے دیں. جیسے اس نے کہا تھا جیسے نبوت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام نبی تھے, اسی طرح مجھے بھی اپنے ساتھ نبوت دے دیں. تو یہ کوئی نبوت ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو بٹتی پھرے. اب دیکھیں استغفر اللہ ربی, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاور کتنا بڑا فتنہ ہے. جب انسان ایک سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے نا, یا اس کے ہاتھ میں کبھی بھی چاہے تھوڑی سی بھی پاور آ جائے, لیکن یہ ایسا فتنہ ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں کسی اور کو کچھ کیسے سمجھ لوں, کسی اور کو اپنے برابر سمجھنا اس کے لیے یا اپنے سے اوپر تو دور کی بات ہے, برابر سمجھنا بھی اس کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے, میں کیسے سمجھوں. تو وہ پاور ہی ایک جس کو کہتے ہیں حب جاہ, حب جاہ ایک انسان کے لیے اتنا بڑا فتنہ ہے نا. چاہے آپ کہیں پہ بھی ہوں, یہ یاد رکھیے, چھوٹی سی بھی آپ کو اتھارٹی مل جاتی ہے, پاور مل جاتی ہے, یاد رکھیں اس کو اپنے لیے ٹیسٹ سمجھیں. کبھی بھی اس کے بعد انسان کا دماغ خراب نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں بڑی چیز بن گیا, میں کم از کم ان سے, چاہے چار لوگوں سے ہی انسان اوپر ہو جائے, چار لوگ ہی اس کے انڈر ہو جائیں, چاہے کوئی گروپ انچارج ہی بن جائے, چاہے کوئی مسجد میں کوئی چھوٹی سی اس کو چیز بنا دیا جائے, اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاور کا نا, جس کو واقعی یہ سچی بات ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک نشہ ہوتا ہے, تو واقعی یہ نشہ چڑھ جاتا ہے دماغ پہ, وہ پھر انسان کے پیر زمین پہ نہیں لگتے, پھر وہ اپنے آپ کو بہت ہائی چیز سمجھنے لگتا ہے. پھر آپ کیسے, میرے لوگ اب اس کی طرف چلے جائیں. جیسے مثال کے طور پہ سمجھ لیں, آج کے وقت میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک دن کا کام کر رہا, اب دوسرا کوئی اور اٹھتا ہے وہ بھی شروع کر دیتا ہے, تو اب وہ پہلے والے کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہائے مجھ سے چھوڑ کے وہاں جائیں گے. اب اس کے اندر ایک تکلیف شروع ہو جاتی, پہلے تو یہ میرے فینس تھے, پہلے میرے ارد گرد ہوتے تھے, اب ادھر جایا کریں گے, ادھر جا کے پڑھیں گے. اگر مقصد ایک اللہ کا نام بلند کرنا ہو تو تب یہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے, دو بھیجے, پھر تیسرا ان کی تائید کے لیے بھیج دیا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ کدھر سے آ گیا, اب لوگ اس کے پاس چلے جائیں گے, کئی لوگ اس کے نہ بن جائیں, کئی لوگ اس کی نہ سن لیں, ہم تو پھر فیل ہو گئے. نہیں, کیونکہ جب مقصد جو ہے نا وہ ایک اللہ کے لیے ہو اور اخلاص ہو نیتوں کے اندر, پھر یہ پرابلم نہیں ہوتا. لیکن جس وقت اخلاص نہ ہو اور مقصد صرف اپنی بڑائی ہو, تب بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہائے مجھ سے یہ عہدہ لے لیا گیا, اب کیا ہوگا میرا, اب میرے وہ فینس کا کیا ہوگا, وہ جو میرے لوگ میرے ارد گرد بیٹھتے تھے, جو مجھے بڑا سمجھتے تھے, جو میری واہ واہ کرتے تھے, جو مجھے میری تعریفیں کرتے تھے, جو مجھے اوپر اٹھاتے تھے, وہ تو رہیں گے نہیں. وہ چیز پھر تکلیف دیتی ہے انسان کو. دس واز دا پرابلم ہیئر. یہی پرابلم ایک اور بندے کا بھی تھا. کس کا تھا؟ ایک اور بندے کا بھی سیم پرابلم تھا. عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین, اس کا بھی تو یہی پرابلم تھا. اس کو بھی تو یہی تھا نا کہ لوگ مجھے پوچھتے تھے. اب یہاں پہ یہ سارے جو انصار تھے وہ تو اس کو بنانے لگے تھے اپنا بادشاہ, اپنا بڑا. اب یہ مجھ سے ہٹ کے ادھر ساروں کی نظریں ہو جائیں گی, میرے سے سب ہٹ جائیں گے, یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, مگر شیطان اس طرح سے انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے, کیا حال کر دیتا ہے انسان کا, اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا, اور اس کو لگتا نہیں نہیں میں تو صحیح کر رہا ہوں. اس سے پاور جاتی بھی نا, अच्छी नहीं लगती। हम ये लोगों को कहते हैं ना जो सियासतदान वगैरह हैं कि वो करप्ट, वो ऐसे, ये कैसे लोग हैं, इनको मौत नहीं याद है। हम बहुत ही बातें करते हैं ना, यकीन करें हम में से बहुत सारे अगर उसी जगह पे हों तो वही कुछ कर रहे होंगे। ये कहना आसान है बहुत, लेकिन वो जो नशा उनको चढ़ा होता, जो उन्होंने मजा पा लिया होता ना कुर्सी का, वो फिर जाने से जाता नहीं है। तो ये बंदा, इसका यही प्रॉब्लम हुआ, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी पावर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कबीले वाले, वो तो आज तक मुझे मेरी वाह वाह करते थे, मुझे इतना ऊपर उठाया हुआ था। इसीलिए मैंने आपकी हिस्ट्री, इसको इसकी हिस्ट्री बताई है आपको कि इसके लोग इसको बहुत इज्जत देते थे, ये समझ लें उनका एक रिलीजियस लीडर था। तो अब मेरे से हटके वो जाके उधर मान लेंगे, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी, अल्लाह तआला में महफूज रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अगर तुम मुझसे खजूर का ये टुकड़ा भी चाहोगे तो ये भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और तुम अपने बारे में अल्लाह के मुकरर किए हुए फैसले से आगे नहीं जा सकते, और अगर तुमने पीठ फेरी तो अल्लाह तुम्हें तोड़ कर रख देगा। वल्लाही मैं तुम्हें वही शख्स समझता हूँ जिसके बारे में मुझे ख्वाब में पूरी तफसील से दिखलाया गया था, और ये साबित बिन कईस हैं जो तुम्हें मेरी तरफ से जवाब देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलट आए, उन्होंने जवाब दिए उसको। वफ्त वापस गया तो मुसैलमा कुछ दिन ठहरा रहा, फिर दावा किया कि उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कार्य नबूवत में, यानी नबूवत के काम में शरीक कर लिया गया। और उसने कहा जी मेरे ऊपर भी वही आने शुरू हो गई है। चुनाचे इसने नबूवत का दावा ये 10 हिजरी में तकरीबन इसने किया था। सुजात मुकाफा कलाम घड़ने लगा, यानी ऐसी ऐसी चीजें कि जी मेरे ऊपर भी वही आ रही है। ये एक बंदा है जिसने ना सिर्फ नबूवत का दावा किया बल्कि उसने कहा मुझे मेरे ऊपर भी कुरान उतरता, और ऐसी ऐसी कलाम कहने लगा कि इसके अपने कबीले का बंदा जब उसको सुनाया इसने अपना कलाम कि ये अल्लाह की तरफ से उतरा है, तो उसने कहा कि तुम जानते हो कि मैं जानता हूं कि तुम झूठे हो, तुम्हें पता है कि मुझे समझ आ गई भी कि तुम झूठे हो, यू आर अ लायर। कोई भी जान सकता था, जाहिर है अल्लाह के कलाम का कंपैरिजन मुकाबले में कोई चीज नहीं ठहर सकती। तो खुद ही इधर उधर से उसने कहा इनके पर ये सूरह फील उतरी है, तो उसने भी एक सूरह निकाल ली, अलफील उमल फील व मादरा कमल फील, उसकी छोटी दुम और लंबी सूंड और ये और वो, इस तरह की बेकार बातें उसने करनी शुरू कर दी, और अपनी कौम के लिए शराब और जिना हलाल कर दिया। उसने कहा इस तरह तो चलो मेरी तरफ तो रहेंगे ना। अब जो इंसान ऐसी हरकतें करने लगे, साफ पता चल रहा है ना अपनी पावर के लिए कि चलो यहाँ पे ईज दे देता हूँ ताकि इस तरह से, आज भी बाज इससे तो नहीं कंपैरिजन, लेकिन आज भी बाज लोग ऐसे ऐसे फतवे देते हैं ताकि लोगों को अपनी तरफ ले आए ना, जरा नरमी करो लोग मेरे पास आ जाएंगे, फिर उधर जरा सख्त हैं तो इस तरह से इनको ये भी हलाल कर दो कि सूद भी जायज़ है ये भी जायज़ है, तो लोग फिर भाग भाग के उनके पास जाते हैं, क्योंकि जाहिर है लोगों को तो वो अच्छे लगते हैं जो उनके मुताबिक की चीज़ें बताएं। अच्छा फिर हुआ क्या, कौम भी फितने में पड़ गई, इसके जो लोग थे इसका कबीला वो इसके ऊपर ईमान ले आए, अस्तग़फिरुल्लाह, और इसका मामला संगीन हो गया। संगीन कैसे हो गया कि यानी इसकी इतनी वो वाहवा हुई कि इसको यमामा का रहमान कहा जाने लगा, यमामा से था ना तो ये यमामा का रहमान है। अब इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत भी लिखा कि मुझे इस काम में आपके साथ शरीक कर दिया गया है, यानी आप तो मुझे नहीं देते थे तो लेकिन मुझे अल्लाह नहीं कर दिया, आधी हुकूमत मेरे लिए और आधी कुरैश के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा जमीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इसका वारिस बनाता है, और अंजाम मुत्तकियों के लिए। इब्ने मसूद से रिवायत है कि इब्ने नवाहा और इब्ने असाल मुसैलमा के कासिद बनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। आपने पूछा तुम दोनों शहादत देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उन्होंने कहा हम शहादत देते हैं कि मुसैलमा अल्लाह का रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद, यानी अपने आप पे ईमान लाया कि मैं अपनी रिसालत पे खुद ईमान लाता हूँ, अगर मैं किसी कासिद को कत्ल करता तो तुम दोनों को कत्ल कर देता, यानी अगर कासिद को कत्ल करना जायज होता तो तो तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाता, इसलिए कि ये मुर्तद हो गए थे ना, पहले मुसलमान हुए उसके बाद इस्लाम से फिर गए। तो लेकिन पूरी दुनिया का एक कानून ये हमेशा से रहा है कि कासिदों को कत्ल नहीं किया जाता। जो डेलीगेट्स आते हैं किसी की तरफ से, किसी कौम की तरफ से, तो उनको सेफ्टी होती है। आज भी दुनिया में यही है कानून। और इस्लाम ने, यानी हालांकि मुर्तद की सज़ा कत्ल है, लेकिन जो एक पूरी दुनिया में एक कानून होता है उसको रिस्पेक्ट किया है, उसकी रिस्पेक्ट रखी जाए। क्या ये नहीं कि नहीं नहीं हम मारेंगे, हमारे तो इस्लाम में ये है नहीं, नहीं, इसके अंदर भी हिकमत होती है। तो हुआ क्या था फिर उसके बाद, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं फिर। और अभी ये सूरत हाल बरपा ही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, इंतकाल फरमा गए। इससे इसकी कौम मजीद फितने में मुबतला हो गई। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी तो अंदाजा करें कि सबसे बड़ा मुर्तद कबीला ये था। ये आखिरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में लश्कर भेजे, इन में और मुसलमानों में सख्त लड़ाइयां हुई। यानी ये इस कबीले के साथ बड़ी जंग हुई थी और मुसलमा और इसका बेशतर लश्कर मारा गया था। मुसलमा उस वक़्त कत्ल हो गया था इस जंग में, और इसका कातिल कौन था? वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, यही हैं जिनके, यानी एक हदीस आती है ना कि एग्जैक्ट अल्फाज तो मेरे सामने नहीं है, कि कातिल और मकतूल दोनों ही जन्नत में चले जाएंगे। ऐसे भी हैं कातिल और मकतूल जो दोनों जन्नत में जाएंगे। यानी कातिल को तो नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन कातिल और मकतूल दोनों जन्नत में जाएंगे। ये किसके कातिल हैं? वाशी जो हैं, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। और देखें इन्होंने फिर, इनको हमेशा रिग्रेट रहा था जब मुसलमान हुए थे। और आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को इतनी ज़्यादा तकलीफ थी ना अपने चचा की शहादत की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सुना था कि कैसे तुमने मेरे चचा को शहीद किया। फिर आपने फरमाया था वाशी मेरे सामने ना बैठा करो, मेरा गम ताज़ा हो जाता है। तो ये अपना मुँह छुपा के बैठते थे आपकी मजलिस में, लेकिन इनको हमेशा ये अंदर दुख रहा कि जो मैंने काम किया, और इसका हमेशा तलाफी की कोशिश की। तो इन्होंने फिर मुसलमा कज़ाब को कत्ल किया था, और ये बहुत बड़ी बात थी। यानी ये चाहते थे कि मैं उसको कत्ल करूं ताकि ये मेरे, मुझे सादत ये नसीब हो, मैं किसी तरह उसका कफारा कर लूं जो मैंने किया। तो मोमिन वही होता है कि जब उससे कोई गलती हो जाए तो वो हमेशा कोशिश करे कि अब इससे ऊपर मैं नेकियां कैसे करूं। हम सबको होता है ना कि हमने उस वक्त में जब हमें नहीं पता था, हमने ऐसे काम किए, ऐसी गलतियां कर ली, ऐसी चीज़ें हमसे हो गई कि आज हम बड़ा पछताते हैं कि हमसे क्यों हुई। अब उसका क्या हम करें, मतलब किस तरह से, अब पछतावा तो है लेकिन उसको रिप्रमेंड करने के लिए हम क्या एक्शन करें। तो उतनी ही कैलिबर की नेकियां करें फिर, कि इन्होंने हजरत हमजा को शहीद किया था तो अब मुसलमा के पीछे थे ताक में कि अब मैंने इसको कत्ल करना, जिन्होंने मेरे नबी के साथ नबुवत का जिसने दावा किया, अब वो मेरे हाथ से कत्ल। और ये भी लंबी कभी वक्त हुआ, अब हमने चुके ये खत्म करना है। ये बड़ी जबरदस्त ये सारी जंग की पूरी बात है कि किस तरह ये जंग हुई थी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, 12 हिजरी में कैसे हुई थी, और कैसे फिर इन्होंने ताक कर इसको कत्ल किया था मुसलमा को। और मुसलमा उस वक्त अच्छी एज का था, बाज़ रिवायात में आता है कि इसकी बड़ी लंबी उम्र इसको मिली, 150 साल का था जब इसको कत्ल किया गया। लेकिन देखें एक उम्र मिल जाना भी बाज़ दफ़ा इंसान की हिदायत का जरिया नहीं बनती। हम सोचते हैं ना कि ये एक एज पर आके समझ आ जाएगी, एक एज आ जाए तो फिर इंसान खुद ब खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि वो मतलब उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर वाकई उसको समझ आ जाती। नहीं, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। या हम अगर सोचें कि हम आज हम जवान हैं, लेकिन जब हम एज में जाएंगे ना, पता नहीं हम कितने नेक हो जाएंगे उस वक्त, क्योंकि जाहिर है बूढ़े लोग सारे ही नेक हो जाते हैं। ऐसा हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि एज आपकी जब हो तो समझ आ जाए। बाज़ लोगों को लंबी लंबी उम्रें भी मिलती हैं लेकिन फिर भी हिदायत नहीं मिलती, फिर भी अकल नहीं आती, फिर भी समझ नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कितने कितने सारे लेसन्स हैं ना, ऑलवेज मैं देखती हूँ कि कितनी सारी चीज़ें तो खैर हम मिस ही कर लेते हैं, इसीलिए हम जल्दी आगे नहीं जा पाते, क्योंकि सुभान अल्लाह ये इतनी सारी एक एक वाक्य में कितनी सारी बातें। जिसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया था, दूसरा कज़्ज़ाब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया गया वो अस्वद अंसी था, इसका जिक्र आगे आ रहा है। ये भी ये यमन में पैदा हुआ था, तो वो उसने भी नबुवत का दावा करते थे। जो दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कड़े दिखाए गए थे ना, तो उनमें से एक मुसलमा कज़्ज़ाब था और दूसरा ये था, तो दोनों आपकी फूंक से उड़ गए, यानी ये कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आज देखें कोई दुनिया में नहीं है जो असवद अंसी का पैरोकार हो या जो मुसलमा कज़्ज़ाब की नबुवत के ऊपर ईमान रखने वाला हो, तो इस तरह फूंक से ही उड़ गए, बस इतनी देर की मार थे, ये फूंक की मार थे। तो ये तो दोनों थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दावा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी आपको पता है मिर्जा कादियानी ने नबुवत का दावा किया, और पूरी दुनिया के उलमा ने उसको काफिर करार दिया और इसके पैरोकारों को गैर मुस्लिम करार दिया, और इसके पैरोकार आज भी ये दावा करते हैं कि जी हम बहुत देखें कन्वर्जन्स कर रहे हैं, हम यहाँ पे बड़ा हमारा अहमदिया जो दीन है हमारा बड़ा फैल रहा है। तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये लोगों को कहते हैं कि आप अहमदी हो जाओ, हमारा फॉर्म फिल कर दो तो हम आपको असाइलम दिला देंगे, क्योंकि हमारी जानों को जी खतरा है अहमदियों को इन मुल्कों में, तो इसलिए असाइलम आपको यहाँ पे वेस्ट में यूके वगैरह में इधर आपको असाइलम मिल जाएगा, इवन यहाँ पे अमेरिका में भी, कि हम वहाँ पे हमारी जानों को खतरा। तो ये कह के बाज लोग अपना दीन बेच देते हैं कि हमें यहाँ पे बस रहने को मिल जाए, हमें यहाँ रहने को। और ये सच्ची बात मैं आपको बता रही हूँ कि किसी साथ मेरे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा नहीं जी, अच्छी भली वो मुसलमान, तो उन्होंने कहा नहीं हमने अहमदिया का फॉर्म इसलिए सिर्फ फिल किया कि हम क्या करें, हमारे वीज़ा के प्रॉब्लम है वरना हमें मतलब डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो हम वैसे दिल से तो नहीं अहमदी हुए, लेकिन वो भी कोई कम चालाक नहीं है, जाहिर है उनको भी पता है कि लोग ऐसे ही ना कहीं झूठा ही ना कह दें। उन्होंने कहा आपको हर वीक आना पड़ेगा, इतनी आपकी अटेंडेंस होगी यहाँ पे, आप हमारी जो भी उनके होते हैं जहाँ पे भी पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जहाँ जो इनकी मस्जिद जिसको कहते हैं, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, आपको वहाँ पे आना ज़रूरी है। तो वो वहाँ पे अपनी तबलीग करेंगे आखिर, तो उनको वैसा ही कर लेंगे फिर। अभी मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ हैं या अल्लाह ताला उनके ईमान को सलामत रखे, और ये बहुत साल पहले की बात है, तो इससे मुझे पता है कि यहाँ पे भी ऐसे होता है। तो ये हम इसको मिर्ज़ा कादियानी मलून को हम कहते हैं कि ये इसने नबुवत का दावा किया और जो इसका पैरोकार है वो काफिर है, ये पूरी दुनिया के उलमा का, ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान इंडिया में ऐसा है, पूरी दुनिया के उलमा ने ये इसके ऊपर उनका कंसेंसस है कि ये गैर मुस्लिम है, हम इनको काफिर कहते हैं। और हमारा इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्यों हम इनके, वो लोग कहते हैं ना क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों आप क्यों, इसलिए कि ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हम कहते हैं अपने आप को तुम कादियानी कहो जो भी कहो, लेकिन अपने आप को मुसलमान ना कहो, वो इससे हटते नहीं है। वो कहते हैं हम अपने आप को मुसलमान भी कहेंगे और फिर साथ वो ये मिर्जा के ऊपर भी यकीन करते हैं। तो हम कहते हैं जैसे यहूदी अपने आप को यहूदी कहता है, भाई ईसाई ईसाई कहता है, हिंदू हिंदू कहता है, ठीक है कहते रहे उनके लकुम दीनुकुम वलिया दीन, लेकिन तुम अपने आप को कहते हो मुसलमान, तुम मुसलमान के भेस में काफिर हो, तो उसके ऊपर ज्यादा होता है ना। देखिए एक मेरा एक ब्रांड है, मैं अपना ब्रांड रखती हूँ, आप अपना ब्रांड निकाल दें, कोई और अपना ब्रांड निकाल लें, ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरे ब्रांड की छाप एक कपड़े पे लगा के और उसको बेचना शुरू कर दे, तब तो मैं उससे दुश्मनी करूंगी ना, कि तुम जाली एक बना के और मेरे ब्रांड को यूज कर रहे हो। ये हमारा इनके साथ प्रॉब्लम है, और लोग इस बात को समझते नहीं, कहते पता नहीं वैसे ही इनके पीछे क्यों मुसलमान पड़े हुए, ये इस वजह से पड़े हुए। तो आगे देखते हैं, शाहाने हिमियर का कासिद के कासिद की आमद। अब ये हमीर नहीं है, हिमियर है, ठीक है, ये हिमियर वाले यमन वाले थे। तबूक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद मालिक बिन मुर्रा रिहावी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। इसके पास शाहाने हिमियर के हारिस बिन अब्दुल अब्दे कलाल, नाइम बिन अब्दे कलाल और नुमान सरबराहाने ज़ीराइन और माफिर और हमदान के खतूत थे, यानी ये डिफरेंट कबाइल हैं, उनके लोग हैं, उन्होंने भेजे थे जो शाहाने हिमियर थे, यानी यमन की तरफ के ये लोग थे। तो इनके खत थे, ये लोग मुसलमान हो चुके थे और इसी इतला के साथ इसको भेजा था। और बाज़ जगह पे आता है कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब वफद आया था बनू तमीम का, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको खुशखबरी दी थी कि ए बनू तमीम तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, और वो कुछ ऐसे लोग थे, कुछ सख्त किस्म के भी लोग थे और ऐसे लोग थे नॉर्थ की तरफ के जो कि ज़्यादा उनका रुझान जैसे माल की तरफ था, तो उन्होंने कहा भी खुशखबरी का मतलब ये है कि हमें तो कुछ मिलना चाहिए, तो आप हमें कोई तोहफे तहाए वगैरह दें या कुछ दें, ऐसे तो नहीं हम खुश होते सिर्फ एक खुशखबरी सुन के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर खामोश रहे, और हमें यही कहा गया ना कि जब कोई जाहिल बात करे तो फिर आप खामोश ही रहें, इग्नोर करें उसकी बात को। इतने में ये हिमियर के लोग भी आ गए और इन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया हिमियर वालों खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, ठीक है। इसलिए बनी तमीम ने तो खुशखबरी नहीं ली, मुसलमान तो हो गए थे लेकिन उन्होंने तो खुशखबरी नहीं एक्सेप्ट की, तो तुम खुशखबरी एक्सेप्ट करो। और इन्होंने कबूल की, उन्होंने कहा कि हम तो यमन से चले ही हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए सवालात, तो आप हमें इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं, फिर उन्होंने सवालात भी पूछे कुछ। तो इनकी बात यहाँ पे आ रही, ये लोग मुसलमान हो चुके थे और इसी इतला के साथ इसको भेजा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जवाबी खत लिखा जिसमें इनके हुकूक और इनकी जिम्मेदारियां बयान फरमाई और मुआहिदीन को जिम्मा अता किया। फिर इनके पास मुआज बिन जबल को कुछ सहाबा के हमरा भेजा। अच्छा, बहुत जगह फिर हम ये हदीस पढ़ते हैं, आपने भी कहीं आपके सामने से गुजरी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज बिन जबल को एक जगह का एक किसी काम के ऊपर मामूर फरमाया, गवर्नर बनाया, तो उनको रुख्सत किया, तो सवारी के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते जा रहे थे और इनको नसीहतें फरमाते जा रहे थे, शहर के बाहर तक निकल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ चलते गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको फरमाया था कि इसके बाद शायद तुम मुझे ना मिल सको। हम फिर नहीं मिले थे, ये बिल्कुल एंड के यानी टाइम की बात है। तो मुआज़ बिन जबल को कुछ सहाबा के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। ये अदन के अतराफ में सकून और सकाके के दरमियान बालाई यमन के काजी, जंगों के हाकिम और सदका और जिजिया की वसूली पर मामूर थे और पांचों नमाजें पढ़ाते थे। यानी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर किसी को भेजते भी थे ना अपने पास से कि जाके उनको दीन भी सिखाएं, या उनके काजी बना के भेजा, जंगों के हाकिम बना के भेजा, और फिर सदका वगैरह वसूल करें, फिर इमाम उनको बना के भेजा। वज़ीर यमन जबीद मारिब जमा और साहिल के लिए अबू मूसा अशरी को भेजा, उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इलाका दिया कि आप इस तरफ को जाएं जो नीचे का यमन का इलाका है, और ये जो इलाके हैं इनके लिए भेजा और फरमाया ये इन दोनों को। आप देखें सुभान अल्लाह कैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें फरमाई थी। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम दोनों आसानी करना, सख्ती ना करना। यानी जब तुम लोगों के पास जाओगे वहां पे, वो लोग हालांकि मुसलमान हो चुके हैं लेकिन एकदम जाते ही डंडा नहीं पकड़ लेना। देखिए इन लोगों के ईमान का लेवल डिफरेंट होता है, अगर उनको जाते ही ये करना नहीं ये करना है और सख्तियां करने शुरू हो जाएं और आप ऐसे नहीं कर सकते और आपने ये क्या किया हुआ और आप, तो लोग भाग जाएंगे। खुशखबरी देना, नफरत ना दिलाना और मिलकर रहना, इख्तलाफ ना करना। क्लोज बाई एरियाज में भेजा था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह की तरफ हज़रत मुआज़ को, फिर कुछ सहाबा उनके साथ भेजे, फिर एक टीम उधर भेजी यमन के नीचे की तरफ के इलाके के लिए। लेकिन उनको नसीहतें कितनी प्यारी की, इसका मतलब है कि ये चीज़ें जो याद रखने की हैं कि जब हम लोगों के अंदर काम करने जाएं जो नए नए मुसलमान हुए हैं, तो उनके लिए ये बातें याद रखें और सख्ती ना करें। बिल्कुल जो टॉप की चीज़ें हैं उनको आज ना बयान करें, नहीं तुम्हें ये भी करना होगा, याद रखो तुम्हें ये भी करना होगा, नहीं पहले फराइज से शुरू करें, फिर आगे आगे फिर चलते जाएं। हम जो छोटे छोटे काम होते हैं ना उनको पहले ले आते हैं और ऐसी चीज करते हैं कि आज ही ये मुत्तकी परहेजगार मुत्तकीन का इमाम ही बना के इसको रखना है हमने। कोई नए स्टूडेंट्स भी आते हैं तो एकदम उनके ऊपर नहीं चढ़ाई कर दें, इसी तरह इख्तलाफ ना करना, आपस के अंदर ना कटना शुरू कर देना। آپس میں مل جل کے رہنا. سبحان اللہ, حضرت معاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن ہی میں رہے. البتہ ابو موسیٰ جو تھے وہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اب اگلا وفد ہے ہمدان کا وفد. اچھا, یہ بھی یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے. یہ بھی یمن جو ہے نا, اور آپ دیکھیں گے آگے بھی یمن کی طرف سے کئی قبائل آئے. یمن ساؤتھ میں ہے نا. یمن والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں ان کو دی ہیں اور بڑی ان کی مدح فرمائی ہے. یہ جو ہمیر والے بھی تھے یہ بھی یمن کی طرف سے ہی آئے تھے. اب یہ ہمدان کا وفد بھی ادھر سے ہی آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں آگے بھی جو ہم وفود پڑھ رہے ہیں وہ بھی یمن کی طرف سے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے بھی ہمیر والوں نے بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری قبول کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الایمان یمانی والحکمت یمانیہ. ایمان جو ہے وہ یمن میں ہے اور حکمت یمنی ہے. کہ اور بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ہمیں برکت دے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں. اللہ ہمیں برکت دے ہمارے شام میں اور یمن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً بعض جگہ پہ آتا ہے کہ 3 بار یہ فرمایا. نجد والے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی دعا کرے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام اور یمن کے لیے خاص طور پہ دعائیں کی تھیں. ان کے لیے نہیں دعا کی تھی آپ نے, ان کے لیے دعائیں کی تھیں. اور اللہ اکبر, یمن عرب سے الگ جگہ تھی. یہاں پہ عیسائی اور یہودی وغیرہ بھی رہا کرتے تھے اور کافی عرصے تک یہود یہاں پہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں جب اپنے حوض پہ ہوں گا نا قیامت کے دن, تو یمن والوں کے لیے میں جگہ بناؤں گا, میں اپنی لاٹھی سے ان کے لیے جگہ بناؤں گا کہ جب تک ان کے لیے جگہ نہ بن جائے کہ لوگ ہٹیں تو یہ آئیں. اور آپ کو پتا ہے انصار بھی یمنی نسل سے تھے. اوس اور خزرج جو تھے نا وہ یمن سے ہی آئے ہوئے تھے. تو سبحان اللہ کتنی شان ہے یمن والوں کی کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا. کیونکہ یہ جو لوگ آتے بھی تھے نا یہاں سے, ایک تو بڑے عاجز مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اتنی دیکھیں ادھر والے آئے تو بنو تمیم وغیرہ آئے وہ ایسے نہیں تھے, لیکن ان میں بڑی عاجزی تھی. تو آپ نے ان کی بڑی تعریف کی. یہ بکریاں چرانے والے لوگ تھے, بکریاں بھی ایک عاجزی والی جانور ہوتی ہے نا. تو آپ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی. اور یہ جب آتے تھے تو بڑی آسانی سے اسلام قبول کر لیتے تھے, تو دل کے بھی بڑے نرم تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں تمہارے پاس یمنی آئیں گے جو بہت نرم دل ہیں, رقیق القلب لوگ ہیں. تو آج دیکھیں پھر دل روتا ہے اس بات کو دیکھ کر کے یمن والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ خاص طور پہ جب میں یہ احادیث دیکھتی ہوں نا تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے نبی نے اتنا یمن والوں کے بارے میں فرمایا. آپ دیکھیں کوئی اور لوگوں کے بارے میں نہیں ایسی بات آتی کہ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جگہ بنائیں گے. تو واٹ اے پراؤڈ نیشن کے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایسی بشارت ہے. اور ایمان یمنی ہے, یعنی سبحان اللہ حکمت یمن میں ہے. تو سبحان اللہ کہ کتنی بڑی بات ہے. تو آج ان کی حالت اظہار دیکھ کے اس قدر تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے. تو یہ دیکھیں یمن سے کتنے سارے آ رہے تھے. ہمدان جو تھا وہ بھی یمن کا ایک مشہور قبیلہ تھا. اور اس کا وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا. اس میں مالک بن نمت تھا جو بہترین شاعر تھا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار کہے تھے کہ میں نے منا کا چکر لگانے والیوں اور قردد کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی کہ اللہ کے رسول ہم میں سچے مانے گئے ہیں. ان کے علاقے ہیں منا اور قردد. یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں. کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو. یعنی آپ کی بہادری کے اور آپ کے سچے رسول ہونے کے, اللہ کی طرف سے آپ کو رسالت ملنے کے, یہ اس ان اشعار میں بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دیا. اور جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر مالک بن نمت کو مقرر فرمایا، پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خالد بن ولید کو روانہ فرمایا، یعنی جو ان کے قبیلے والے باقی لوگ تھے. انہوں نے 6 مہینے گزار دیے مگر وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. اس کے بعد علی بن ابی طالب کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد بن ولید کو واپس بھیجیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت لکھی تو آپ سجدہ ریز ہو گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام. سبحان اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سلام ملا. اور دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں سجدہ شکر کرنے کی دلیل، کہ جب ہمیں کوئی خوشی کی خبر ملے تو ہم فوراً سجدے میں چلے جائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو جیسے بھی ہیں آپ، جس طرح سے بھی ہیں، فوراً سجدہ کر لیں اس وقت، ٹھیک ہے. اس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں وہ بھی گئے تھے لیکن کام ان سے نہ ہو سکا. ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کوالٹیز دی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے ایک چیز ایک سے نہ ہو، مثلا وہ جنگوں میں زیادہ اچھے تھے، تو حضرت علی گئے تو انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ لو اب میرے پیچھے کسی اور کو بھیج دیا کہ میرے سے کام نہیں ہو رہا، مجھے واپس بلا لیا. یہ بھی تو انسان کی ایگو کا ایک وہ ہو جاتا ہے نا پرابلم، کہ مجھے کیوں کہا ہے کہ میرے سے نہیں ہو پا رہا، مجھے کیوں واپس بلایا، یعنی میں ہی کرتی نا یہاں پہ کام. نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو واپس بھیج دیا. آپ کو پتہ ہے بعد میں بھی خالد بن ولید کے ساتھ ایک جس کو کہہ سکتے نا کہ ایک یہ نام چپک گیا تھا کہ جس جنگ میں خالد ہوں گے وہ جنگ جیتی جائے گی. یہ چیز ان کے ساتھ، تو ان کے پیچھے سے جو اب مجھے یاد نہیں ہے، خالد بن حضرت عمر تھے، انہوں نے ابو عبیدہ کو بھیجا تھا ان کے پیچھے سے کہ ان کو کہیں کہ وہ ہٹ جائیں، یہ میرا خط لکھ کر جاؤ، ان کو کہیں وہ ہٹ جائیں اور ان کی جگہ پہ یہ کمانڈر ان چیف ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح کو اتنے جنگ میں نہیں صحیح تھے، تو انہوں نے فوراً گیو اپ کر دیا. یہ نہیں کہا کہ اچھا تو میں آج تک میں لیڈ کرتا رہا ہوں، اب کیسے ہے کہ میرے اوپر تمہیں ڈال دیا اور تمہیں کیا پتا اتنا، اور اپنا گروپ بنا کے الگ ہو جاتے اور ان کے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دیتے، اور کیا دشمن سے کے ساتھ کیا لڑنا تھا، خود ہی آپس میں لڑنے لگتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جو آج ہم میں کتنا کامن ہے، کتنا ہم اس چیز کو لیتے ہیں کہ ہائے میرے اوپر کسی اور کو، اس کو کیوں دے دیا کام، یہ تو میرا تھا. خاموشی سے الگ ہو گئے. ہاں وہ پتا، وہ جنگ بھی ہار گئے پھر مسلمان. تو یہ ان کے، اب ایسا بندہ جو ہمیشہ فاتح رہا ہو اس کی تو پھر ایگو بھی کتنی زیادہ ہو جاتی. انہوں نے نہیں یہ اس چیز کو مائنڈ کیا کہ میرے پیچھے حضرت علی کو کیوں بھیج دیا. نہیں کوئی بات نہیں، وہ آ کے کر لے. اسی طرح بنو عبد المدان کا وفد، یہ بھی ان کی بھی ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ یمن سے آئے تھے، اور ساؤتھ موسٹ ایریا سے تھے، آج کے سعودیہ کے جو یمن کا بھی جو سب سے نیچے کا پورشن، یا نہیں سب سے نیچے کا نہیں، جو ساتھ ملا ہوا ہے سعودیہ کے، وہ علاقہ تھا یہ، اور بڑا گرین تھا. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الآخر 10 ہجری میں خالد بن ولید کو سرزمین یمن کے علاقہ نجران میں بنو عبد المدان کے پاس روانہ کیا کہ انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ نہ مانیں تو لڑائی کریں. اور یہاں پہ تو نہیں ہے مگر تھا کہ اسلام کی دعوت دیں، اگر نہ مانیں تو جزیہ دینا کا ان کو آفر کریں کہ جزیہ دے دیں، اگر وہ بھی نہ مانیں تو پھر ان کو کہیں کہ اب آپ کو علاقہ چھوڑنا پڑے گا، پھر یعنی جنگ ہے ان کے ساتھ. یہ ہے اسلامی شریعت کا کہ اس طرح سے آپ ان کو آپشنز دیں. جیسے نجران کا وفد دوسرا آیا تھا، وہ جو عیسائی تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جزیہ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان جا کے لوگوں کو بس یہ فوراً آپ مسلمان ہو جاؤ ورنہ کچھ نہیں، ایسا کہیں نہیں ہوا. نہیں مسلمان ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لائق راہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں کہ آپ نے مسلمان ہونا ہے، آپ پھر جزیہ دے دو اور نہیں ہے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو तो ये सारी की सारी अच्छा, अगर वो ना माने तो लड़ाई करें। चुनाचे वहां पहुंचकर हजरत खालिद ने सवारों को हर तरह इस्लाम की दावत देने के लिए भेज दिया, जो कहते थे लोगों इस्लाम ले आओ सालिम रहोगे, यानी सलामती में रहोगे, लोग मुसलमान हो गए। तो ये पूरी की पूरा जो प्रोविंस था ना, वो सारा का सारा मुसलमान हो गया। अब हजरत खालिद बिन वलीद क्या करें, वो तो यहाँ पे ये सोच के आए थे कि भाई अगर नहीं है तो फिर लड़ना होगा। तो हजरत खालिद ने इनके दरमियान ऐसे लोगों को मुकर्रर किया जो इन्हें इस्लाम की तालीम दे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला लिख भेजी कि अब आप बताएं कि अब आगे हम क्या करें। अब वहां पे एक बंदा भी मुकर्रर कर दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि कहीं पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं छोड़ा। अगर वो कबाइल है तो उनका कोई आदमी आया हुआ, वफद आया हुआ, तो उसमें से किसी एक बंदे को जो थोड़ा बहुत ट्रेन करके उसको अमीर बना दिया गया, उनके पास किसी ना किसी सहाबी को भेजा कि वहां पे और तालीम दे, उनको सिखाएं, उनको बताएं, उनके काजी मुकर्रर किए या उनके सिपहसालार मुकर्रर किए, इस तरह से ऐसे ही उनको छोड़ नहीं दिया। अब हमारे यहाँ होता क्या कि एक बंदा शहादा ले लेता है, उसके बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। बस उस दिन तो हम उससे बड़े गले मिलते हैं, बहुत उसको मुबारकबाद देते हैं, उसके बाद क्या है। तो आज भी इसी चीज की जरूरत है कि जब लोग मुसलमान हो जाए तो हम उनको छोड़े नहीं, बल्कि उनकी तालीम का इंतजाम करें। ठीक है, यही सुन्नत रही है, क्योंकि इस तरह से लोग जम नहीं सकते फिर दीन पर। तो फिर उनका वफ़त लेकर आए, पैगाम दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को पैगाम दिया कि इनका वफ़त लेकर आए, यानी वहां से फिर आप एक डेलीगेशन भेजें। हज़रत खालिद ने ऐसा ही किया। जब वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आपने दरियाफ्त फरमाया कि जाहिलियत में, अच्छा ये इससे पहले थोड़ी सी बात बता दूं कि अच्छा उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद से फरमाया कि अब आप ऐसा करें कि एक वफद वहां का मेरे पास भेज दें, यानी ताकि उनको भी ट्रेन किया जाए। तो वो वफद जब आया तो अंदर दाखिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा बड़े नरम अंदाज में कि आप लोग कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम फिर यहाँ से आए हैं। आपने फरमाया था कि तुम लोग हिंद वाले लगते हो, यानी इनकी इनके फीचर्स कुछ डिफरेंट थे, इनकी रंगत भी कुछ डिफरेंट थी। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनके ईमान का भी इम्तिहान लिया था, इनसे कुछ सवाल किए थे ताकि पता चले ये वाकई अपने इस्लाम में पक्के हैं। तो वो लोग इसमें पूरे उतरे थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा था कि ये बताओ कि आज तक आप लोग जो जंगे करते रहे हो तो कैसे उसमें, क्या उसमें करते हो कि हमेशा आपको मतलब फतह होती है, ऐसा क्या करते हो, यानी क्या राज है आपका। तो फिर उन्होंने बताई थी दो रीजंस। अब ये यहाँ पे देखते हैं कि आपने पूछा इनसे कि जाहिलियत में जो तुमसे लड़ता था तुम इस पर तुम लोग किस वजह से गालिब आते थे। उन्होंने कहा हम यकजा होते थे, मुतफर्रिक नहीं होते थे, यानी क्या आपस में ही टूटे नहीं होते थे। जो कौम भी आपस में ही इख्तलाफात में पड़ी होगी वो किसी और से कैसे लड़ेगी, उसको तो लोग फिर ख़त्म कर देते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर की पॉलिसी है ना, आपको सबको पता है कि फिर किसी को फतह करने का एक तरीका क्या होता है कि उसको डिवाइड कर दिया जाए। आज मुसलमान कैसे बिखरे हुए हैं दुनिया के अंदर, कैसे तितर बितर हुए हैं। वो कहते हैं हम इकट्ठे रहते थे, मुतफर्रिक नहीं होते थे, और किसी पर जुल्म का आगाज नहीं करते थे कभी, हम इनिशिएट नहीं करते थे कभी कि हम जुल्म करें। तो देखिये उन्होंने राज की क्या दो बातें बताई हैं, जबरदस्त। आपने फरमाया तुम लोगों ने सच कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तायीद की कि जब भी कोई कौम इकट्ठी होगी, जब भी कोई कौम यूनाइटेड होगी तो वो फतह पा, कभी भी किसी जुल्म का आगाज करने वाले ना हो। और आपने कैस बिन हुसैन को इनका अमीर मुकर्रर फरमाया। ये लोग शव्वाल के आखिर या ज़िकादा के शुरू में अपनी कौम के पास वापस गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास अमर बिन हजम को भेजा कि इन्हें दीन समझाएं। अमर बिन हजम कौन है, ये भी एक सहाबी रसूल है, इनको वहां का यानी मुअल्लिम बना के भेजा, सुन्नत और इस्लाम की चीदा चीदा बातें सिखाएं और इनसे सदकात वसूल करें। आप देखें टेम्परेरीली खालिद बिन वलीद ने वहां पे एक बंदा मुकर्रर कर दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक सहाबी को भेजा जाके उनको सही से सारी चीजें सिखाएं। और देखें वो एक टीचर बन के जाते थे। तो हमने अगर आज तक नहीं सीखा, हम अगर बॉर्न मुस्लिम भी हैं लेकिन आज तक हमें अगर दीन के अहकामात नहीं पता, तो अभी भी हमारे सीखने में कोई हर्ज नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं बॉर्न मुस्लिम होना ही काफ़ी है, इसके बाद सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे कोई नया मुसलमान हुआ हो या कोई बॉर्न मुस्लिम है लेकिन आज तक उसको कोई पता ही नहीं है, कोई तालीम नहीं है, उसको भी उसी तरह ज़रूरत है जैसे नए नए मुसलमान होने वाले को ज़रूरत है। तो इसमें कभी शर्माना नहीं चाहिए या इसमें कभी ये नहीं समझना चाहिए हमें क्या आप सिखाएंगे, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है। ठीक है, आपने इसके मुतालिक इन्हें एक तहरीर भी लिख कर दी जो बहुत मशहूर है। इस बात को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इन सहाबी की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत लिखा था और इस खत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहतें लिखी थी। जो सीरत की किताबें हैं ना उनमें ये खत बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है या मशहूर है, इसलिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खत था। इसके बाद कोई खत नहीं लिखा, ये तकरीबन एक सफ़े का खत है। अल्लाह अकबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वो खत है, किसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खत लिखा था, तो ये इनको। बनु मुजहज का इस्लाम। अब ये भी एक कबीला है जो यमनी कबीला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास हज़रत अली बिन अबी तालिब को रमज़ान 10 हिजरी में इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा और हुक्म दिया कि जब तक वो लड़ाई ना करें, लड़ाई नहीं करनी। लेकिन हर एक कबीले के पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, क्योंकि लोग एक जैसे नहीं होते। मगर उन्होंने इनकार कर दिया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके पास पहुंचे और उनकी जमीयत का सामना हुआ तो इन्हें इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और मुसलमानों पर तीर चलाए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने साथियों की सफबंदी की और इनसे लड़कर उन्हें शिकस्त दी, लेकिन उनके ताकुब से कुछ देर रुके रहे, फिर उनसे जा मिले और इन्हें फिर इस्लाम की दावत दी। अब की बार वो लोग मुसलमान हो गए। इसका मतलब है उन्होंने कोशिश जारी रखी। देखें, पहले सफबंदी की, उनसे लड़े, उनको शिकस्त दी, लेकिन उनको चेज नहीं किया, उनका ताकुब नहीं किया, कुछ देर रुके रहे, फिर जाके अमन के साथ उनसे मिले। ताकुब करते तो क्या था, मारना ही था ना। पीछे से जब एक भागती हुई फौज है, उसके पीछे दूसरी फातह फौज भागती है, तो उसको क्या करती है, तो खून खराबा होता, ये मकसद था ही नहीं। देखिए, यहाँ से पता चलता है कि इस्लाम का मकसद ये नहीं होता कि इलाके कॉन्कर किए जाएं, इलाके फतह किए जाएं, बल्कि ये कि लोगों को दीन इस्लाम की तरफ दावत दी जाए, ये मकसद होता है। वरना क्या मुश्किल था, वो तो शिकस्त खा ही गए थे, उनको पीछे जाते उनको मारते और ज़्यादा। लेकिन यहाँ से पता चल गया कि किसी का मुसलमान हो जाना वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि उसको उसको उसके पीछे जाके उसको खून खराबा किया जाए। फिर इन्हें इस्लाम की दावत, अब की बार वो मुसलमान हो गए। इनके सरदारों ने बैत की और कहा कि हमारी कौम के जो लोग पीछे हैं हम इनके जिम्मेदार हैं और ये हमारे सदकात हैं, इनमें से आप अल्लाह का हक ले लीजिए। हज़रत अली ने ऐसा ही किया, फिर पलट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हज्जतुल विदा में मक्का के अंदर आपसे मुलाकात हुई। अच्छा, एक तो बात यहाँ पे हमें ये पता चल गई कि ये जो सरदार थे इन्होंने बैत भी कर ली, इन्होंने सदकात भी दिए। तो पहले तो ये कह रहे थे हमने नहीं इस्लाम लाना, पहले तो इन्होंने तीरों की बरसात शुरू कर दी थी। इससे पता चलता है कि आप ये नहीं कह सकते किसी को किसी के एक एक्शन से, तो इसने तो अब मानना ही नहीं है, अब तो इनको यानी इनके साथ कुछ सख्त रवैया ही इख्तियार किया जाए, अब ये इनसे बस हम डिसअपॉइंट हो गए। नहीं, किसी का कोई वक्त हो सकता है कि आज वो मुखालफत करता है लेकिन कल उसका दिल नरम हो जाए। आज वो मुसलमानों पे तीर चला रहे हैं, अगली दफा उनको, अभी तो उन्होंने इनकार किया था जब इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और मुसलमानों पर तीर चलाए, तो होना तो ये चाहिए था कि उसके बाद बस गिव अप कर देते, ये खत्म है, बस ये दुश्मन है, ये काफिर है और ये कहते हैं कि हमने इस्लाम भी नहीं लेकर आना, तो इनको तो मारना जरूरी है ना, और हमारे पर तीर भी बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन उन्होंने देखा, उनको टाइम दिया, अब वो मुसलमान हो गए, ले आए उन्होंने अपने सदकात भी ले और सच्चे मुसलमान हुए। तो हम किसी के भी कुछ नहीं कह सकते गारंटीड के नहीं इसने ये किया है तो अब लिहाजा बस खत्म है, अब इसके बाद ये कभी नहीं लाएगा। डोंट गिव अप। जरूरी नहीं कि आज उसने इनकार किया तो कल भी इनकार करें, कोशिश जारी रखें। और देखिए यहां पे फिर हजरत अली ने फिर जब यहां से पलटे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा में मक्का के अंदर आपसे मुलाकात हुई। अब ये बात को आप याद रखिएगा क्योंकि जब हम हज्जतुल विदा पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जब पता चलेगा कि हजरत अली तशरीफ लाए तो फिर जेहन में ये ना हो वो कहां से आ गए, अब वो कहां से अब आ रहे हैं, वो कहां से पहुंच रहे हैं। मक्का में वो जाके उन्होंने ज्वाइन किया था, फिर वो वजह क्या हुई थी देखिये, वो यहां पे थे ठीक है, तो वो लेट वहां पे साथ जाके मिले थे, मदीना से आ नहीं रहे थे वो। अज शनुआ का वफद, ये भी यमन के अतराफ का एक मशहूर कबीला है, इसका वफद सर्द बिन अब्दुल्ला अजदी की क्यादत में आया और मुसलमान हो गया। आपने हजरत सर्द को इनका अमीर बनाया और हुक्म दिया कि जो इस्लाम ला चुके हैं इनको साथ लेकर आस पास के अहले शिरक से लड़ाई करें, यानी उनको भी फिर इसी तरह इस्लाम की पहले दावत दें, नहीं वो मानते तो फिर जिजिया, नहीं तो फिर लड़ाई। और ये जो अर्ध शनुआ के लोग हैं ना, इनके बारे में एक दिलचस्प बात ये आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे और वहां आपको अंबिया दिखाए गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी डिस्क्रिप्शन बताई खासतौर पे ये मूसा अलैहि सलाम की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मूसा अलैहि सलाम शनवाई लोगों की तरह थे। ये कैसे लोग थे, इनके शार्प फीचर्स थे और इनकी रंगत सांवली थी। जो लोग सोचते हैं ना मूसा अलैहि सलाम का कि वो शायद गोरे रंग के होंगे तो ऐसा नहीं है, इनका रंग डार्क था इन लोगों का। जरीर बिन अब्दुल्ला बजली की आमद और जुल खलासा का इन्हिदाम, इन्हिदाम का मतलब क्या, डिमोलिश करना उसको। और जरीर बिन अब्दुल्ला बजली जो थे ये बाद में सहाबी बने, तो देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जरीर बिन अब्दुल्ला बजली भी तशरीफ लाए। ये मशाहिर सहाबा में से हैं, यानी मशहूर सहाबा में से। इनके कबीला बजलिया और खत्म का एक बुत और एक बहुत बड़ा बुतखाना था जिसे जुलखलसा कहते हैं, यानी इनका भी कबीला जो बजलिया, इसीलिए उनको कहते हैं, इनका कबीले का नाम बजलिया था और एक और भी कबीला था खत्म के नाम से, खतम। तो उन इनका एक दोनों का एक ही बुत था जिसका नाम जिस और एक बुतखाना था जिसका नाम जुलखलसा था। वो इससे खाना काबा की हमसरी करते थे, यानी वो कहते थे कंपटीशन में रहते थे काबा के साथ। चुनाचे वो काबा को जो हमारा काबा है इसको काबा शामिया कहते थे और अपने बुतखाने को काबा यमनिया कहते थे, यमानिया कहते थे। क्यों? क्योंकि ये यमन में थे ना, तो उस तरफ था इनका, तो इन अपना यमानिया कहते थे और वो काबा शामिया क्योंकि नॉर्थ में था जो आज काबा है वो उसको कहते थे काबा शामिया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जरीर से फरमाया क्या तुम मुझे जुलखलसा से राहत ना दोगे, यानी उसको खत्म कर दो, मुझे इससे जान छुड़ाओ। तो उन्होंने शिकवा किया कि वो घोड़े पर बरकरार नहीं रह पाते, यानी मैं घोड़े पर सवार तो होता हूं लेकिन उस पर सही से बैठ नहीं सकता, मेरा ये प्रॉब्लम है। उन्होंने ये नहीं फरमाया कि अच्छा अच्छा हाँ ठीक है बस आपने कह दिया बस मैं तो अभी जा रहा हूं। उन्होंने बयान किया कि उनका उनके साथ कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है। देखिये इंसान ने एक काम ले ले और उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम्स है और बताए ही ना तो दूसरे को कैसे पता चलेगा और उल्टा सीधा फिर काम करता रहे। उससे बेहतर है कि जो भी इमाम है लीडर है उनको बता दिया जाए मेरा ये प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर मैं ये काम कर सकती हूं, ना कि झूठे ही बस कहते जाना, लारे लगाते जाना जी कर दूंगी फिक्र ना करें और हो भी नहीं रहा वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से इनके सीने पर जरब लगाई और फरमाया ए अल्लाह इन्हें साबित रख और इन्हें हादी और महदी बना, इनको साबित रख, यानी वो कहते थे ना मैं घोड़े पे साबित नहीं रह सकता, यानी मैं उसके ऊपर बैठता हूं तो मैं बैठ नहीं पाता। तो अल्लाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और सिर्फ उतनी नहीं दुआ फरमाई जितनी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, बल्कि ये भी फरमाया अल्लाह इनको हादी भी बना और महदी, हादी हिदायत देने वाला और महदी जिसको हिदायत मिल गई हो। ये जो थे ना जरीर बिन अब्दुल्ला बजली, ये ऐसे थे कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी भारूब शख्सियत दी हुई थी। जैसे कुछ पर्सनैलिटीज ही ऐसी होती ना, आप उनको देखते हैं तो ऐसे लगता है आप मैसमराइज से हो जाते हैं, कि दूर से कोई देखता था ना ऐसे लगता था कोई बादशाह चला आ रहा है। तो उनके आने से पहले ही आपने सहाबा से फरमाया था कि इस दरवाजे से कुछ देर बाद एक आदमी दाखिल होगा जिसके चेहरे पर ऐसी तमकनत होगी जैसे बादशाहों के चेहरे पर होती है, और उसमें बड़ा हिल्म होगा, बड़ा हौसला होगा। कुछ देर बाद ही ये हाजिर हुए तो सहाबा ने जो सुना था वही उनको बयान कर दिया, तो ये इतने खुश हुए कि ये फौरन फिर इस्लाम ले आए थे। ठीक है, तो ये इनकी थोड़ी सी स्टोरी है जरीर बिन अब्दुल्ला बजली की। चुनाचे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनके लिए दुआ की तो इसके बाद वो घोड़े से कभी नहीं गिरे। फिर वो अपनी कौम अहमस जो बजलिया की एक शाख है कि 150 सवारों के साथ जुलखलसा गए और इसे वीरान कर दिया और जलाकर खारिश जदा ऊंट की तरह छोड़ दिया, यानी अपने हाथों से उस बुतखाने को वीरान कर दिया, उसको जला दिया, ख़त्म कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे क्यों ये काम कराया? लेकिन जब एक कौम के अपना कोई बंदा को काम कर रहा होगा ना तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, बाहर से कोई आगे करता है तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम लिया। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कामों को डेलीगेट करते थे ना, ये भी आप देखें यहाँ पे कि जो जिस काम को जिससे कराना है, जिसको समझते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कर सकता है, उसी से वो काम लिया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं कहीं पर भी किया, यहाँ पर देखें आप एक बात और सीखें कि सब कुछ बस मैंने ही करना है, किसी और को मैंने नहीं देना काम, और मैं खुद ही सिखाऊंगा सारों को, और कोई ना जाके और सिखाए, कोई ना आगे बात बताए, कोई ना करे, ताकि सारे बस मेरे पास ही रहें, उनका ना नाम हो जाए। बाज़ दफ़ा हमें कोई हुनर आता है, कोई काम आता है, तो हम किसी को भी आगे डेलीगेट नहीं करते, किसी को आगे नहीं चाहते कि वो इस काम में मेरे साथ शराकत कर ले, या वो आगे आगे जाके ये काम करे, या मैं इसको भी साथी बना लूं, या मैं इसको कुछ सिखा दूं या कुछ कर दूं। हालांकि अगर आप किसी आदमी को नेकी का कोई काम सिखा देते हैं और वो आगे जाके करता है ना, तो उसको जितना अजर मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उसको सिखाया। तो हम दिलों में तंगी ना पैदा करें। अगर मुझे कोई टेक्निकल काम आता है, अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ आती है जो दूसरा करने को तैयार है, वो आपसे कहता है मुझे सिखा दो, हम कहते हैं नहीं, हमने नहीं सिखाना, ये ना मेरा काम ले ले। ठीक है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को भी भेज सकते थे, इनको भेजा। और अबू अरता को इसकी बशारत देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। ये एक शख्स है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमस के घोड़ों और लोगों के लिए 5 बार बरकत की दुआ की। अहमस कौन है? जो बजलिया की एक शाख है ना, जिससे ये हैं जरीर बिन अब्दुल्ला बजली। तो देखें आपको यहां से सहाबा के नाम भी पता चल रहे हैं, और उन सहाबा के नाम पता चल रहे हैं जिनका आपको पहले नहीं पता था। तो जब हम बच्चों के नाम रखने लगते हैं तो हम यहां से भी देख सकते हैं नाम। ठीक है, तो इनकी जो कौम थी, इनके घोड़ों के लिए भी और लोगों के लिए। घोड़े क्या होते हैं? इंसान का माल है ना, सवारियां हैं उनकी, तो यानी उनकी माल मता के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और उनके लिए भी दुआ की बरकत की। सुभान अल्लाह, ये देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दुआएं करते हैं, कभी उनके लिए दुआ कर रहे हैं, कभी जो लोग आ रहे हैं मुसलमान हो रहे हैं उनको तहाइफ दे रहे हैं और उनको दुआएं दे रहे हैं। और तो इससे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं दिया करते थे लोगों को, और इसमें यह भी पता चलता है कि 5 दफा दुआ की। एक दफा भी कर सकते थे, एक दफा भी। अब जब बशारत उन्होंने भेजी है कि देखिए मैंने खत्म कर दिया उसको, अबॉलिश कर दिया उसको जो जुलखलसा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बशारत मिली, तो अब वो तो नहीं आके सुन रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पीछे उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, और एक बार नहीं 5 बार दुआएं मांग रहे हैं। मैं कहती हूँ 5 दफा दुआ करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाज़ दफ़ा तो हम अपने लिए भी 5 दफा ना दुआ करें, किसी और के लिए क्या करनी है। लेकिन इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चलता है ना कितनी खैर ख्वाही थी आपके अंदर लोगों के लिए, कितनी सिंसेरिटी थी। अब इसमें तकल्लुफ़ भी नहीं करना चाहिए कि बस तकल्लुफ़ से बस ऐसे ही प्रिटेंड कर करके दूसरे को दिखाने के लिए कि जी देखो मैं आपके लिए कितनी अच्छी अच्छी दुआएं कर रहे हैं, ये नहीं, दिल से निकलनी चाहिए दुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल किसी से भी खुश होता था ना तो उसको दुआ देते थे। देखें सुभान अल्लाह, ये भी सुन्नत एक याद रखनी चाहिए। और दुआ देने में क्या हर्ज लगता है, कितने कितनी एनर्जी लग जाती है, कोई पैसा लगता है, कोई कोई थकन हो जाती है, कुछ भी नहीं। तो दुआ देने में कभी बुखल ना करें, दुआएं देने वाले बने। और दुख ये होता है कि आज इवन जो बड़े हैं वो भी दुआएं देना भूल गए। यानी पहले ज़मानों के अंदर हम नानियों दादियों के ज़मानों को सोचें तो वो बहुत दुआएं दिया करती थी, लेकिन जो अब की जनरेशन आ रही हैं दुआ देनी ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती उनको कि दुआ दें क्या। उस वक्त की मुझे तो अपने से याद है कि इतनी दुआएं देती थी और पता नहीं कैसी कैसी दुआएं होती थी कि इंसान सोचता रह जाता है। फिर अब जाके समझ आती उनका मतलब क्या होता था, उन दुआओं का इतनी डीप होती थी। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, मगर दुआएं ही दुआएं देते थे, छोटे छोटे कामों पे इतनी दुआएं दिया करते थे। अब उसकी जगह थैंक यू आ गया, बहुत होता है तो हम जज़ाकअल्लाह खैरन कह देते हैं, इससे आगे नहीं। तो दुआएं देना सीखें, हम अपने बच्चों को दुआएं दिया करें, छोटे छोटे कामों पर दुआएं दें। और दुआ जब आप किसी को देते हैं तो उसका दिल खुश हो जाता है। लेकिन फिर अगेन दुआ इसलिए ना दें कि एक तकल्लुफ़ करना है बस, चलो ये मेरी तारीफ़ें करेगी कितनी अच्छी दुआएं देती है, अगली दफ़ा भी मेरा काम मैंने कराना है ना इससे, तो चलो ऐसे करूँगी तो अगली दफ़ा भी तो काम करेगी ना फिर। इसलिए नहीं, इखलास होना चाहिए दुआ में भी, दिल से निकलनी चाहिए दुआ, वो भी एक फैशन ना बन जाए सिर्फ। तो देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 दफ़ा दुआ कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, इम्प्रेसिव है ना ये बात। हमने कभी किसी के लिए की इस तरह, क्योंकि वो हमारे सामने भी नहीं है, हम 5 दफ़ा उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। और वो आके तो नहीं कह रहे कि हम मेरे लिए दुआ करें, उन्होंने तो बस एक वो बशारत भिजवाई कि ये खुशखबरी है, गुड न्यूज़, आपने ये कहा था ना इससे मुझे निजात दो, राहत दो। राहत नहीं दोगे, देखें किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक तरीका था ना, ये भी फरमा सकते थे जाओ जाके ये काम करो, फरमाया क्या तुम मुझे इससे राहत नहीं दोगे। अस्वद अनसी का जहूर और कत्ल, ये है अब वो जो दूसरा मलून था जिसने नबुवत का दावा कर दिया। यमन में अमन और इस्लाम की तकमील हो चुकी थी और इसके तमाम अतराफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमाल मौजूद थे। उमाल कौन? अमल करने वाले, यानी जो सारे रिप्रेजेंटेटिव जो कामों पे लगे हुए थे कारिंदे। कि अचानक काफे हन्नान नामी शहर में 700 जंगजुओं के साथ अस्वद अनसी जाहिर हुआ। वो अपने लिए नबुवत और हुकूमत का दावेदार था, इसने आगे बढ़कर सना पर कब्जा कर लिया। यानी उसने पहले दावा भी किया, फिर उसने अपने साथ जो उसके जंगजू थे उनके साथ आगे बढ़ के एक इलाका भी था यमन में, सना जो कैपिटल था वहां का, उस पर भी कब्जा कर लिया। फिर उसका मामला मजीद संगीन हो गया, उसका फितना सख्त और उसकी हुकूमत ताकतवर हो गई। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उमाल थे, यानी कारिंदे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम करने वाले सारे लोग भेजे हुए, कोई काजी बना के, कोई ये बन के, कोई टीचर है, कोई कुछ है, आशारीन के इलाके में सिमट आए और मुसलमानों ने इसके साथ मसलहत से काम लिया। उन्होंने अभी उन्होंने कोई जंग नहीं इसके साथ शुरू की। ये सिलसिला 3 या 4 महीने जारी रहा। फिर फिरोज दैलमी और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके फारसी साथियों ने जो मुसलमान हो चुके थे कोई चाल चली और फिरोज ने उसे कत्ल करके उसका सर काटा और किले के बाहर फेंक दिया। ये देखकर उसके साथी भाग निकले और इस्लाम और अहले इस्लाम गालिब आ गए। अब देखें जो इस किस्म के लोग होते हैं उनके साथी भी फिर वैसे ही होते हैं, जब उन्होंने देखा इसका सर काटा हुआ इस तरह से किले से लटक रहा है, तो किले से बाहर फेंका हुआ है, तो वो भी फिर भाग गए उसको छोड़ के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमाल अपने अपने कामों पर वापस आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला लिख भेजी। अस्वद अनसी के कत्ल का वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से सिर्फ 1 दिन और 1 रात पहले पेश आया था, यानी नेक्स्ट डे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए थे। तो वो जो उन्होंने इतला भेजी वो तो इतनी जल्दी थोड़ी पहुंचनी थी, लेकिन इसके मुतल्लिक आपके पास वही आ गई, यानी फौरन आपको वहाँ इतला दे दी गई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसकी इतला दी। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ख़त भी आ गया। वो ज़ाहिर अब ख़त कोई ये टेक्स्ट तो था नहीं कि फ़ौरन पहुँच जाता, कुछ दिन लगे उसके अंदर भी। तो ये था इनके बारे में। अच्छा, इसी तरह एक और वफ था, मुजैना का वफ था, जिसकी यहाँ पे जिक्र नहीं है मगर उनके बारे में भी आपको सुना देती हूँ कि उनके, चूंकि उनके साथ एक मौजज़ाती एक चीज़ हुई थी कि वो भी जब आए और इस्लाम लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये काफ़ी बड़ा ये वफद था इनका भी, सब ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया कि इनको रास्ते के लिए खाना दे दो, जैसे सफ़र में जब जाएंगे तो फिर चलो उनको सहूलत रहेगी। बाज़ कहते हैं कि पूरा कबीला पूरा का पूरा इस्लाम ले आया था, कोई 500 अफराद थे, तो हज़रत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह मेरे पास तो कोई ऐसे इतना नहीं है कि मतलब मैं इतने सारे लोगों को खाना दे दूँ, एक थैला है बस खजूर का। तो आपने फरमाया जाओ इनको जाके खाना दो। तो अब हज़रत उमर परेशान है लेकिन ठीक है, आगे कुछ नहीं बात की। अपने घर गए तो देखा इनके घर में पूरा कमरा भरा हुआ खजूर से, फर्श से लेके छत तक। तो जाके उन लोगों को बुलाया और हर एक ने अपने थैले भर लिए और वो सफ़र में सारा वक्त उन्होंने यही खजूरें खाई। एक तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना था, दूसरा वफ़्ते दौस के बारे में आपको बताना था कि दौस का वफद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। और आपने पढ़ा होगा तुफैल दौसी के बारे में। तुफैल दौसी जो थे वो पहले ही इस्लाम ला चुके थे जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। आपको याद होगा कि वो आए थे और मक्का वालों ने कहा था कि कोई इनकी बात ना सुन ले, एक नबी एक नबूवत का दावा कर रहे हैं, वो जादूगर हैं और वो जादू कर देते हैं। और फिर इन्होंने कहा था मैं इतना तो कोई पागल नहीं हूँ, मैं जाके क्यों ना सुनूं, ये अपने कबीले के सरबराह थे। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं किसी की बातों में ऐसे आ जाऊँगा। तो फिर ये गए थे और इन्होंने जाके फिर इस्लाम कबूल कर लिया था और फिर इन्होंने आके अपने कबीले में भी दावत दी थी और लेकिन कबीले वालों ने नहीं माना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और फरमाया था कि आप बदुआ करें मेरे कबीले के बारे में, लेकिन आपने फरमाया था अल्लाह दौस को हिदायत दे, और आपकी इस दुआ के बाद इस कबीले के लोग मुसलमान हो गए थे। तो फिर ये तुफैल दौसी जो थे अपनी कौम के 70 या 80 लोगों को लेकर 7 हिजरी में ये मदीना इन्होंने हिजरत कर दी थी। क्या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में तशरीफ़ फरमाते उस वक़्त ही आए थे। और बताएं कबीला दौस में से एक आदमी थे जिनका नाम बहुत मशहूर है, जो एसेट हैं समझ लें कि इस कबीले के, और ये 7 हिजरी में आके मिले हैं। और फिर देखें चंद साल ही ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यानी कुछ अरसा ही रहे। कौन थे वो, किसी को पता है? मशहूर मुहद्दिस अबू हुरैरा, वो इसी कबीले से थे। और कितना थोड़ा अरसा, अभी वो आए हैं, मतलब है कि हिजरत करके आ गए हैं और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे। और सबसे ज़्यादा हदीस उनसे ही मरवी हैं, सबसे ज़्यादा रिवायतें अबू हुरैरा से हैं। अब देख लें कि उन्होंने दिन रात फिर लगा दिया था, थोड़ा टाइम उनको मिला, इसी को बरकत कहते हैं, थोड़ा टाइम उनको मिला लेकिन उस थोड़े टाइम के अंदर उन्होंने कितने कारनामे किए कि आज देखें आप बुखारी मुस्लिम उठा के कितनी अहादीस अबू हुरैरा से हैं। तो जब ये 70-80 घराने ये आए थे हिजरत करके, तो इन्हीं में एक आदमी था जिनका नाम नहीं पता चलता लेकिन वो काफ़ी, जिसको कहते ना डिप्रेस हो गए थे जब हिजरत कर ली। जाहिर है दूसरी जगह जाके रहना, अपना घर बार अपना वतन अपना सब छोड़ के आसान नहीं होता, तो डिप्रेस हो गए या जो भी उनका मामला हुआ। लेकिन उन्होंने एक दिन एक तेज़धार आले से अपनी उंगलियां काट ली थी जिनसे इतना खून बहा कि वो फौत हो गए थे, यानी एक तरह से खुदकुशी कर ली थी उन्होंने। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी उनकी यानी ऐसी थी कि वो इतने गमगीन थे कि इसकी वजह से उन्होंने ये किया था। तो ये वाकया मुस्लिम शरीफ में है। अब तुफैल दौसी जो हैं, जो लीडर थे उनके और सब, तो वो ख्वाब में क्या देखते हैं कि ये शख्स जन्नत में है। और एक ये भी देखते हैं कि जो उंगलियां उन्होंने जिस हाथ की काटी थी वो कवर है। उनसे पूछा क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो बोले अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि और किस लिए माफ़ किया है, कि मेरी हिजरत की वजह से मुझे माफ़ कर दिया। मगर उनके हाथ जो कवर्ड थे, तो तुफैल अद्दौसी ने पूछा कि तुम्हारे हाथों का क्या हुआ? तो फिर फरमाया कि ये जो है, ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस चीज़ को तुमने खुद ख़राब किया है उसकी इसलाह हम नहीं करेंगे, जिसको तुमने खुद बिगाड़ा है उसकी इसलाह हम नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने आके ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाया, तो आपने दुआ की है अल्लाह उसको माफ़ कर दे, उसकी उंगलियों के ऊपर उसको माफ़ कर दे, अल्लाह उसके हाथों पे उसको माफ़ कर दे। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक बात है कि हम फौरन किसी के लिए जजमेंटल ना हो जाए। हम नहीं जानते किसी का एक गुनाह हमें पता चलता है अगर, लेकिन उसने कोई ऐसी ऐसी नेकी की हो जो हमसे छुपी हुई हो और जिसकी वजह से उसकी बख्शिश हो जाए, हम नहीं जानते। तो इवन इतना बड़ा कोई गुनाह खुदकुशी के बराबर भी हो, तब भी फौरन जजमेंटल ना हो जाए, तब भी फौरन लोगों को बातें ना करना शुरू कर दें और जहन्नमी होने के फतवे ना देना शुरू कर दें। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। तो यहाँ तक हमने वफूद के बारे में पढ़ लिया, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आगे का। अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारा ये पढ़ना, और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया इसी तरह नोट्स में आप लोग एक एक कबीले का लिख के आगे फिर आप उनकी एक एक ख़ास बात जो याद रखने की है वो लिख लीजिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।